अध्याय 20 मापतौल। प्राचीन भारत में मापतौल व्यवस्था। भूमिका। प्राचीन काल में क्रय विक्रय की वस्तुएं निश्चित माप के अनुसार तौली जाती थी और उसके पश्चात उसके निर्धारित मूल्य ग्रहण किए जाते थे। वैदिक युग में तौल की व्यवस्था वर्तमान थी। ऋग्वेद से विदित होता है कि वस्तुओं का भाव तय करने के बाद सौदा पक्का किया जाता था तथा उनका मूल्य चुकाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी वस्तुओं की सुनिश्चित माप और तौले होती थी। अष्टाप्रूढ़ 8 मुदिकियों से चिन्हित होता था। 100 रत्ती की तौल को शतमान कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि तुला शब्द का भी व्यवहार उस युग में हो चुका था। माप तौल व्यवस्था। नंबर 1, पाणिनी ने माप और तौल का विस्तार से वर्णन किया है। उसने परिमाण तुला मास एक सिक्के के बराबर निष्पाव कोष्टक में स्वर्ण आदि तौलने का सूक्ष्म बटखरा स्वर्ण कोष्टक में 20 रत्ती के बराबर विष्ट शतमान आढ़क अचित पुरुष आदि का उल्लेख किया है। पाणिनि के काल तक करसापण निष्क्रमण पाद भाषा स्वर्ण आदि अनेक सिक्के प्रचलित हो चुके थे। नंबर 2, वस्तु की सही तौल आवश्यक मानी गई थी जिनकी व्यवस्था राजा करता था। कूट तुला का प्रयोग करने वाला व्यक्ति श्रद्धा में बुलाने योग्य नहीं था। दीर्घ निकाय से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि कोई कम तौल से धोखा देकर धन अर्जित करता था तो वह मिथ्या अजीवी के समान था। तुला से ही वस्तुओं को सही तौल हो पाती थी। बौद्ध युग में तुला घर भी हुआ करते थे। इस युग में निख कोष्टक में नस्क सुवर्ण कोष्टक में स्वर्ण हिरण्य कोष्टक में हिरण्य धन कहापड़ कोष्टक में करसापड़ धरण कहापड़ धरण कहापड़ कोष्टक में कर सापड़ पड़ कंस आदि सिक्कों का प्रयोग निश्चित माप के मूल्यों के रूप में प्रचलित था। नंबर 3, कौटिल्य ने तौल और माप का सा विस्तार चर्चा की है। उनके अनुसार तौल की माप बटखरा लोहे की बनती थी। शंख जैसी वस्तु के भी बटखरे बनते थे जिस पर पानी या लेप का कोई असर नहीं होता था। प्रथम श्रेणी के कांटे का आयाम 6 अंगुल होता था और द्वितीय श्रेणी के कांटे का आयाम 8 अंगुल। सभी कांटों में दोनों और तुलने वाला सामान और बाट एक साथ रखने के लिए सिक्का कोष्टक में सिकहर जैसी दो पलड़े बने रहते थे। नंबर 4, अर्थशास्त्र में 16 प्रकार की तराजुओं का उल्लेख हुआ है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तौलने में पृथक पृथक रूप में प्रयुक्त होते थे। मनु ने लिखा है कि तुला मान प्रति मान और तराजू को राजा अच्छी तरह जाँच कर परीक्षा करे तथा प्रति 6 मास पर उसकी जाँच कराता रहे। तुला मानम प्रतिमानम सर्वचात्यातसु लक्षितम षट्सु षट्सु च महासेषु पुनरेव परिच्छयेत। याज्ञवल्क ने भी तौल और माप पर राजा को दृष्टि रखने की सलाह दी। स्मृतियों में अनेक प्रकार की मापों का उल्लेख हुआ है जिनमें सरसपा मध्यव किसड़ल मासा सुवर्ण आदि प्रमुख हैं। गुप्त युग में अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। ये मुद्राएं स्वर्ण रजत और ताम्र की थी। नंबर 5, वस्तुओं का उचित मूल्य लेना श्रेयकर माना जाता था। कात्यायन का कथन है कि अनुचित रूप से बेचा गया माल 100 साल से भी लौटाया जा सकता है। अनधिकृत रूप से बेची गई वस्तु लौटाई जा सकती थी। विकृत वस्तु का अवैध होना प्रमाणित हो जाता था तो वह लौटा दी जाती थी। स्वांग चांग ने हर्ष के समय विनिमय के साधनों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सोने के सिक्के चांदी के सिक्के कौड़ियों आदि विनिमय के साधन थे। नेपाल के विनिमय का माध्यम तांबे की मुद्राएं थी। कंगोज राज में कौड़ियों और मोतियों से वस्तुएं क्रय की जाती थी। हेमचंद्र के अनुसार वजन और संख्या को निश्चित करने का नाम मान था जो दो प्रकार का होता था, संख्या और परिमाण। माम नियत्ता साचा द्विविधा संख्या परिमाणम च। नंबर 6, वस्तुओं की अदला बदली। कभी कभी वस्तुओं की अदला बदली करके भी दूसरी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती थी। हेमचंद्र के समय जौ की अपेक्षा मट्ठे का मूल्य आधा था। एक सिर जौ देने पर सिर मट्ठा प्राप्त होता था। यही मट्ठे के परिवर्तन का आधार मूल्य था। जौ गुण वेवाम मूल्याभूताम भूतानाम यवानदिस्वित जीव यवा युद्धस्वित मूल्यम। इस युग में भी सोने चांदी तांबे आदि विभिन्न धातुओं की मुद्राएं विनिमय में प्रयुक्त की जाती थी। शुल्क का आशय तथा वस्तुओं पर शुल्क। राज्य की ओर से व्यापारी की वस्तुओं पर लगने वाला कर शुल्क कहा जाता था। पाणिनि के अनुसार माल पर लगे शुल्क के आधार पर वस्तु का नामकरण हो जाता था। जैसे पांच करसापड़ चुंगी बताने पर पंचक सतपक तक आदि चुंगी घर को शुल्कशाला तथा वहां से प्राप्त होने वाली आय को सोलक साली कहा जाता था। शुल्क तो दक्षिणी भाषाओं में शंकु कहा जाता था जिसने बिगड़ कर चुंगी शब्द बना। कौटिल के अनुसार शुल्क का अधिकारी शुल्काध्यक्ष था। इसके साथ उसकी सहायता के लिए अन्य कई कर्मचारी होते थे जो लाए गए सामानों का नाम, यात्रा लाए गए स्थान का नाम, मुद्रा जो दी गई उसका ज्ञान लिखित रूप से उसे देते थे जिसके आधार पर चुंगी तय की जाती थी। कुछ ऐसी भी वस्तुएं थी जिन पर शुल्क नहीं देना पड़ता था, जैसे विवाह में उपयोगी, दहेज में पाई गई उपहार तथा यज्ञ के लिए ले जा रही वस्तु आदि। वैराइकम न्यायनम मौपायनिकम यज्ञकृत्यम। मनु के अनुसार कर की वसूली लाभानुसार की जाती थी। यह शुल्क वस्तु का 1/6, 1/10, 1/15, 1/20 अथवा 1/25 भाग हो सकता था। पतंजलि ने भी व्यवहारिक वस्तु पर लगाए गए कर को शुल्क कहा है। एक विद्वान के शब्दों में शुल्क प्रदान करने के पश्चात ही वस्तु को अर्हता प्राप्त हो जाती थी, जिसे अवक्रय की संज्ञा दी गई थी। यह अवक्रय राज्य की आय का प्रधान साधन था। वात्स्यायन ने अष्टवर्ग के अंतर्गत पथकर को स्वीकार किया है। मिताक्षरा में जल थल दोनों मार्गों से जाने वाले सामान पर दो प्रकार के कर लगाने की व्यवस्था का उल्लेख है। धर्मसूत्र के अनुसार शुल्क विक्रय की जाने वाली वस्तु का 1/20 भाग होता था। शुल्क के अनुसार वस्तु पर केवल एक बार शुल्क 1/6, 1/20 या 1/32 भाग का लगाया जा सकता था।